He was a Grihastha Bhakta, but he was engaging all his senses in the service of the Lord. The Vaimanakrishna, his mind was always thinking of the Lord. His words were always speaking the glory to the Lord. He engaged his hands in the temple, his feet undoing the Purakrama, his nose and smelling the salty offerings to the Lord. His sense of sight was touching the bodies of the devotees. In this way, all of his senses were constantly engaged in the Angosha Bhakti. We also used to follow very strictly the Akadasi Vrat. So it happened once that the day after Akadasi, very early in the morning on the day of Dwadasi, then the Vrata Rishi, he came from his ashram here and he went over to the palace of Angosha Maharaj. So when he arrived in the palace of Angosha Maharaj, it was very early in the morning and the parentai was coming close to him. So he approached Ambarish Maharaj, and Ambarish Maharaj thought, oh, a guest has come. And what kind of guest? A very elevated, very qualified, very wonderful rishi. Devata Rishi has come. So I must serve him. So he gave his pranam to Devata and said, okay, how can I serve you? Let me give you some water and something to eat. And Prabhupada said, no, I have not yet finished my daily activities, so many prayers that I perform in the morning. I have not taken my bath. So first, I will go to Yamuna and take bath, and when I return, then you can see me. So after saying that, Prabhupada Rishi, he left the palace of Ambarish Maharaj and went to take bath
in Yamuna.
In the meantime, Ambarish Maharaj was forced into a dilemma. What was that? Now the time, the current time breaking the Akadasi was coming to an end. And at the same time, a guest is coming to his house. So according to Dharma, according to the principles of Vaishnavism Dharma, and proper etiquette, if a guest comes to your home, especially a very great guest like the Vata Rishi, you must feed him first. You should not eat before he eats. So this is the rule of Dharma. But according to the regulations of bhakti, the paramarchic dharma, transcendental spiritual dharma, one must break a sadhati within the current time. So Ambarish Maharaj, he was now in a dilemma. Either he could follow the dharma of ordinary dharma of the general people, or he would have to follow the paramarchic dharma. If he took any parents, then it may be an offense to the Vata Rishi, according to the Gopic Dharma. But if he did not break the parents, then this would be an offense. So as a parent, had to break the parents. If he took any parents, the rules and regulations of common people and ordinary dharma, if they come against, they come in opposition to bhakti, then they will have to be discarded. They will have to be given up. Because on no account, in no situation, should anyone ever commit any offense to Bhakti Devi. Because Bhakti Devi is the only wealth of any jiva. So, Ambarish Maharaj, he consulted with his ministers, and on their guidance, they advised him, because your fast is completely on Akadasi, there is no need to take any grain to break your Akadasi. But rather, you can take a drop of charnamrit. By taking charnamrit, simultaneously, you will have observed the Torah, you will have broken your Pharisees, and at the same time, it can be said that you have also fasted. You have not eaten before your guest. So, taking this advice from his minister, Amrish Maharaj, he took him drop his sign on it. At that time, Devasa Rishi was taking bath into Buddha. And because he is a great sage, and his knowledge, he is practically omniscient, he can know everything. He could understand that Amrish Maharaj has taken something. When he realized this, he became very angry. What is this? This Amrish Maharaj, he's an ignorant person, he's just a rotten Grihastha. He doesn't know how to respect real rishis and real sages. Our God teaches him a lesson. So in a very angry mood, then Devasa Muni, he went to the palace of Amrish Maharaj and began to chastise him. What kind of religious principle is this? You have gone against all the religious principles. You do not know how to honor a guest. And for this very serious offense against me, then you will have to suffer. And then he took one lock from his hair, removing one jack, he threw it on the ground. And immediately, a very ferocious and terrible, fighting, fiery demon manifested there and ran very quickly to kill Amrish Maharaj. Amrish Maharaj, he is a pure Vaishnava, a pure devotee. A pure devotee is never afraid of anything. Because his mind and heart are completely sheltered at the lotus feet of the Lord. Narobi, Rakobi, Yorita, Soa. You can kill me, or you can save me. Do anything you like. I mean, it's it up, Suadika. I am your eternal servant. My Lord, you have the right to do anything to me. This is the mood of a Vaishnava. So every time, he was not afraid when the fiery demon ran towards him to kill him, but rather very peacefully, he stood with folded hands, ready to accept whatever mercy the Lord wanted to distribute to him. This is the mood of devotion.
Chakra of my Prabhu, Narayan.
I have no power to help you. Suryendra Rasa didn't do it. I said it goes to the Raya. Suryendra Rasa, he fled to the Vaikuntha Loka, to the planet in the Raya. He's so powerful. And he fell at the feet of Narayan. I said, oh my lord Narayan, you're the best and chakra is going to kill me. Please help me. And what did Narayan say? Aham bhakta aparadino siyapya tatsa yugadija sadhu vidakshuridayo bhakta bhakta jinapriya. Oh my dear Brahmin. Narayan was so respectful to Navasa. He said, oh my dear Brahmin, aham bhakta aparadino siyapya tatsa yugadija. I am not independent. You are asking me to do this, but I am not independent. I am completely under the control of my devotees. Sadhu Vigrasya Vinayo. Those sadhus, they have occupied my heart from top to bottom, and therefore I have no independence. Bhakta Bhakta Janapriya. What to speak of my devotees? Even the devotees of my devotees, they are so dear to me. So I cannot help you. Then the Lord said, Sadhu, they are so dear to me. My son is not so great. I thought he was an offender. I thought he was a rotten tree hunter. I thought he was nothing. I thought I was doing so many austerities, but he's like an Israel. But now I'm seeing the real glories of his own. So then the Raya said, you have to go and beg forgiveness from Amrish Maharaj. So then the Bhakta Rishi, he did that thing which he did not want to do. No. You accept my obligations. And please, help me. This chakra is about to kill me. So then, Amrish Maharaj, he offers prayers to the Siddhartha chakra. And requesting him, please, don't bring any harm to the Vata, to my guest, the Vata Rishi. So then, Siddhartha chakra, he disappears. And the Vata Rishi, he came to know that Amrish Maharaj had not taken any prasadam during the entire time that he's been chased all over the universe. This was a period of 1 year. So, Amrish Maharaj, he'd only taken one drop of Chandamrita, and for 1 year he had fasted. Because his guests were promised to return and not yet returned. Now, his guests had returned, then he received his guest and wanted to feed him without himself taking. He wanted to feed the Vata. When the Vata Rishi saw this, he called out, alas, alas, how wonderful. Today, I am so fortunate. Why? Because I've come to see the greatness of a Vaishnava. Our Vaishnavas are so great. Even if someone commits offense against them, even if someone wishes ill for them, they never wish ill against that person. But rather, they always desire the benefit. They always desire auspiciousness and welfare, even in the lives of their enemies. How great are the Vaishnavas? They, by their bhakti, they have controlled the heart of the Supreme Personality Godhead. I have done so many austerities, and I have attained such mystic powers, but I am like a sword in the presence of Amrish Maharaj. For those Vaishnavas who have controlled the heart of the Lord, what remains for them to attain? They have attained everything. They are so great. So then, Amrish Maharaj, he calls the Vata Rishi. Oh my guest, please eat, eat. This is safe. And the Rasa says, yes, and you should also take. And they took the Shaman, and then the Rasa Rishi gave his pranam to Amrish Maharaj. And he said, I will never, ever commit offense to Vaishnava again, but rather, I will travel around the world and glorify them. So, from this pastime, there are great, wonderful lessons.
তুমি মার্কেটে চালিয়ে দিলে বাসানি
সকালে
দিতে
হলে
এইটা করো তোমার যা আছে আমার আনে তারা
আর
তোমার
Anyone who thinks that the Vaishnava belongs to any caste or creed, then he is an offender. He is a resident of hell. He is
Nitai. Nitai.
And in this situation, what can also see?
Kukur.
What is the glory of Bhakti? The Vaishnava
is Kukur.
Great yogi. He has done so many austerities. He has so many mystic powers. But he cannot be compared to a simple Vaishnava. Who is just hearing, chanting, remembering, cleaning the temple, and following a Sadhguru's path. Also, from this pastime, we see that the power of a Sadhguru, that the following of a Sadhguru is so important and so powerful. It cannot be compared to all of the austerities of great yogis, even such as Navasariti. So, Navasariti is very famous. His pastimes have been narrated in the Ramayana, his pastimes have been narrated in Mahabharata. And in the Purana, he is famous throughout the three worlds. And so, it is a very fortunate thing for the three worlds that his ashram has fallen into the hands of the Gaudiya Vaishnava Sampradaya. So now, all the so many yogis, sattvas, Shivites, and followers of Purana and Ramayana, they will come here. And when they come here, they will receive the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Go on, Premanande!
খুব বেশি না ভালো বেশ ভালো যারা করে বলি
গুরবে গৌরচন্দ্রায় কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় সদভক্তায় নমো নমঃ। हम लोग गुरु वैष्णव गांधीवत समय जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यह स्थान का नाम दुर्गा किला है। अभी अभी श्रीलॉ महाराज श्री आदित्य जी ने उनका जिसका चरित्र को वर्णन कुछ बतलाने के लिए, लेकिन दुर्गा किला जो चरित्र है वो एक अवलौकिक और एक विश्व है। इसलिए वैष्णव क्रिया मुद्रा इसके ना बुझ है। वैष्णव का जो क्रिया, उनको जो व्यवहार है, बड़े बड़े शिक्षा व्यक्ति भी उनको समझ नहीं पाते। इसलिए गुरुभाषा जी का जो क्षेत्र है ऊपर में देखने के लिए एक तरह का, लेकिन जब हम अंदर में प्रवेश करेंगे लेकिन इसका जो तात्पर्य दूसरे तरह का है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर जी बताए जब देखो वैष्णव व्यवहार के दुख
दुख
जान्यता परानंद सुख वो भी ऐसे बताए। इसलिए ये जो छवि, यह छवि सप्तयुग से भी सप्तयुग से लेकर के ये त्रेतया एवं द्वापर अभी तक भी दुर्वासा जी का जो महिमा है, ये स्थल में उनका तरह तरह का घटनाएं, तरह तरह का उनको जीवन में तरह तरह का या घटनाएं दिखा देखने को मिला। अभी श्रीला महाराज जी प्रेम प्रयोजन भी उनको जीवन चरित्र के बारे में कुछ बताएं। कभी श्रीला दुर्वासा जी उनको जीवन में जैसे श्रीमती ऋषभान राजनी
जी बोलो दुर्गाशा जी का अमृत वाला घटना के लिए कहा था। अभी तो बताओ किसी को ऋषभान नंदनी वाला भी छोड़ इन्हें तो बोल दिले ना। अरे वो तो अंग्रेजी तो बहुत ज्यादा ज्यादा हिंदी या बंगला वाला तो अभी जन ये जन बोले किसान
द्रौपदी
तुम्हें पर बोल रहे পরে আমি যা বলছি দুর্গাটা আর অম্বরীশ বালা ঘটনাটা যা বলেছে ওই সঙ্গে
राजा थे उनको देश चलता था। मंत्रियों को जरा वो
राजस्व को जो परिचालना मंत्री को क्या करवाते हैं और स्वयं एकादश इंद्रियों के द्वारा भगवत भक्ति का अनुष्ठान करते हैं। जब उन्हें ऐसे भक्ति किया करने पर भगवान ने देखा था, देखो ये तो चौबीस घंटा में चौबीस घंटा मेरे भक्ति में ही डूबा रहता है। वो तो राज्य कैसे देखभाल करना चाहिए अपना को रक्षा करने के लिए, वो कुछ भी नहीं करता। इसलिए भगवान संतुष्ट होकर के रक्ति सती की विश्वास उनको संपूर्ण विश्वास था, अगर हम भगवान को भक्ति करेंगे तो गुप्त से वर्णन तथा वो जरूर पालन हमें करेंगे। रक्ति सती की विश्वास उनको ये दृढ़ विश्वास था, भगवत भजन करने पर भगवान जरूर हमें रक्षा करेंगे। इसलिए उनको विश्वास और उनको भक्ति में निपुणता और चतुष्णता में भगवत अनुशीलन देख करके भगवान स्वयं सुदर्शन चक्र को भेज दिया। ये सुदर्शन चक्र ये अंबर जी महाराज अपना को रखवाल अपना शरीर को देखने के लिए अपना राज्य शासन करने के लिए वो नहीं देखता है, वो चतुष्णता में चतुष्णता बड़ा भजन करता है। इसलिए तुम अगर अंबर जी महाराज को कोई विपत्ति आए तो तुम ही रक्षा करना। इसलिए उनको देश में संपूर्ण रूप में सुदर्शन चक्र के द्वारा वे संपूर्ण रूप में सुरक्षित थे। इधर दुर्भाग्य ने उनको स्वागत का दिन जब उनको घर में आए, नियम होता है पारण किसी वैष्णव को खिला करके किसी ब्राह्मण वैष्णव को खिला करके अगर हम व्रत कर ले तो उसका फल पूर्ण होता है। जब अंबर सिंह महाराज घर में दुर्भाग्य जब उनके घर में पहुंचे बड़े संतुष्ट हो गए, बड़े अहोभाग्य है आपका हमारा घर में एक वैष्णव बधा रहे, आज तो इनको भोजन करा के प्रसाद सेवा करेंगे। कहा इतने में अंबर सिंह महाराज इनको अतिथि रूप में स्वीकार करके कहा आज कृपा करके आप हमारे घर में प्रसाद सेवा दीजिएगा। तो उन्होंने स्वीकार किया। तो मैं जा रहा हूँ यमुना में स्नान करके आऊंगा। इधर वे यमुना में स्नान के लिए आए। जब यमुना में स्नान के लिए आए इधर नियम होता है व्रत एक टाइम पर व्रत को खोलना चाहिए और वो टाइम में अगर अतिक्रम हो जाए तो व्रत, अगर व्रत नहीं खोले तो एकादशी व्रत करना नष्ट हो जाएगा। इसलिए अंबर सिंह महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, अभी धीरे 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 टाइम अभी सीखते हुए जा रहे हैं। अगर वे टाइम में देखते देखते रहे यदि वो टाइम में नहीं आए इतने में अंबर सिंह महाराज तो बड़े विपत्त में पड़ गए। क्यों? हमारे नियम होता है अगर घर में कोई अभिसंत कोई ब्राह्मण आए तो उनको खिला करके हमको खाना चाहिए, लेकिन अभी तक ये दुर्गा खाली आए नहीं। अगर वो भोजन कर लेते तो फिर उनको जो घर में अतिथि आए हैं उनको अवमानना करना होगा। इसलिए उन्होंने इतने में ब्राह्मण से परामर्श लिया, अभी हमें क्या करना चाहिए, हम अभी बड़ी विपत्ति में पड़ा है, अगर उनको नहीं देख रहे के व्रत खोलते तो ये अपराध में हाजिर होना पड़ेगा। अगर हम उनको खिला कर खाते हैं फिर तो हमारा जो एकादशी व्रत है एकादशी व्रत वो भक्ति का जननी है। इसलिए एकादशी व्रत करने पर भगवान का प्रसन्नता और भक्ति प्राप्त होती है, इसलिए भगवान के लिए ही एकादशी व्रत है। अभी अगर एकादशी व्रत अगर नष्ट हो जाएगा फिर भगवान तो चरण में हमारा अपराध हो जाएगा, हमारे भक्ति नष्ट हो जाएगी। अभी दो तरह का विपद में सम्मुखीन है। इसलिए वे ब्राह्मणों को बुला करके परामर्श लिया, अभी मुझे क्या करना चाहिए ये विपत्ति अवस्था। तो ब्राह्मणों ने परामर्श दिया, देखो आप जो एकादशी व्रत किए हैं वो नियम भू एकादशी व्रत किए, उसमें जल तक भी ग्रहण नहीं करते, इसलिए आप ऐसे कर सकते भगवान का चरणामृत लेकर आप पानी नहीं लिया है इसलिए भगवान का चरणामृत द्वारा आप व्रत खोल सकते हो। इसलिए चरणामृत लेना इसमें आपका खाना भी नहीं होगा और व्रत भी खोल जाएगा, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं होगा, हम लोग कुछ लेते नहीं, इसलिए आपको चरणामृत द्वारा व्रत खोल जाएगा। इसलिए उनको परामर्श लेकर भगवान का प्रीति के लिए हुए ये केवल चरणामृत ग्रहण किया, लेकिन दुर्गा का बहुत प्रताप है, इसलिए स्वयं शंकर जी का आश्चर्य आए महाजोगी है, इसलिए ये यमुना में स्नान करके लिए अपना दिव्य दृष्टि के द्वारा उन्हें देख लिया अंबर सिंह महाराज मुझे नहीं खिला करके आतिथ्य सत्कार नहीं करके वो स्वयं चरणामृत ग्रहण किया है। इसलिए वो तो समझ गए अपना योग कर्म को जरा और समा के लिए यहाँ से क्रोध कुमारी वहाँ पर गए और जाकर के अम्बरीश महाराज का खंड तो बड़ा साधु बने हो बड़ा गृहस्थ बने हो मुझे आज आतिथ्य रूप में तुम स्वीकार किया लेकिन मुझे भोजन नहीं करा तो तुम भोजन कर लिया जैसे तुम भंड साधु हो जैसे तुम भंड गृहस्थ हो तुम अपना को बहुत बड़ा समझते हो आज हम तुमको दिखा देंगे इसलिए किसी ने अपना मस्तक से एक जटा उन्हें उठा करके उन्होंने एक बहुत बड़ा चीज किया रास्ता प्रस्तुत किया जब तुम जाकर के अम्बर सिंह महाराज को तुम ध्वस्त कर डाले इतने में वह राक्षसी ललकार के लिए जब अम्बर जी महाराज को ग्रास करने के लिए गए इतने में अम्बर जी महाराज भगवान का परम भक्त है जो भगवान का भक्त होते हैं वो संपूर्ण रूप में भगवत चरण में समर्पित आत्मा होते हैं मारवी आसवी जो इच्छा तुम्हारा संपूर्ण रूप में भगवत चरण में समर्पित मुझे बनाते भगवान को विश्वास रखते हैं भगवान जरूर मुझे रक्षा करेंगे क्या विश्व ब्रह्मांड मुझे रक्षा करते हैं मुझे नहीं रक्षा करेंगे और दूसरा बात यह है भक्त कभी मरने के लिए डरता नहीं वो जानता है इधर रहेंगे प्रभु का भक्ति करेंगे मरने का बाद ही प्रभु का धाम में वहां भी उसके प्रणाम मिलेगा इसलिए भक्त लोग कभी मृत्यु से कभी भी नहीं डरते हैं और उनको पूर्ण विश्वास है अगर प्रभु का इच्छा होएगा तो हम जहाँ भागने पर भी अपना व्यवस्था नहीं कर सकते अगर प्रभु का इच्छा नहीं जाएगा तो यहाँ भी मुझे कोई नहीं मार सकते ये भगवान के प्रति भक्तों का ये दृढ़ विश्वास रहता है इसलिए अम्बर सिंह महाराज का विश्वास है हम भगवान को भजन करते हैं इसलिए भगवान जरूर मुझे रक्षा करेंगे और जो कुछ भी होगा वो प्रभु को इच्छा के द्वारा ही होगा बिना प्रभु को इच्छा छोड़ करके एक प्रकार इसलिए उनके दिल विश्वास है इसलिए अम्बर सिंह महाराज उन पर खड़े होकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे प्रभु जो इच्छा तुम्हारा सब तुम्हारा इच्छा से होगा मरना तो आज मरेंगे रक्षा करोगे तुम ही रक्षा करोगे इसलिए वो आंख बंद करके भगवत स्मरण में मस्त हो गए इतने में भगवान पहले ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया था अम्बर सिंह महाराज का अच्छा बुरा तुम ही देखना इसलिए अम्बर सिंह महाराज जब एक जगह में खड़े हुए सुदर्शन चक्र हमारे वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं काल चक्र डराए जितिया कृष्णदास जो काल चक्र है जो भगवान के सेवक को भी काल चक्र भगवान के भक्तों को देख करके काल चक्र भी डरता है इसलिए काल का अधीन भक्त नहीं होते हैं काल भगवान का अधीन होते हैं इसलिए वो अपना इच्छा मृत्यु होता है इसलिए जो सुदर्शन चक्र प्रभु का निर्देश प्राप्त है सुदर्शन चक्र जब देखा ये भगवान भक्तों को अभी सुदर्शन उनको मानने के लिए आ रहे हैं भगवान प्रतिज्ञा किया है कौन से प्रतिज्ञानी नाम भक्त प्रणति हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो जो मेरा चरण में शरणापन्न होते हैं तभी उनको विनाश होता नहीं ये भगवान स्वयं प्रतिज्ञा स्वयं अर्जुन को द्वारा प्रतिज्ञा कराते स्वयं भगवान प्रतिज्ञा किए हैं भगवान भक्त का विनाश नहीं है इसलिए सुदर्शन चक्र भक्त प्रकट हो गया छोटी सूर्य का तेज है अपना तेज को द्वारा ये राक्षस को वध किया करके वो चक्र दुर्बा सब किसके उनको मारने के लिए दौड़ा क्यों चलिए भगवान भक्त को बढ़ने ये ध्वज किया है भगवान भक्त किया है इसलिए सुदर्शन चक्र दुर्भाषा को किसी ने भावा दिया उनको पीछे भगा इतने में दुर्भाषा ऋषि अपना की जान को लेकर भरे वहां से भगते भगते ब्रह्मा जी के पास में गए जब ब्रह्मा जी के पास में गए अरे क्या बात है कहते सुदर्शन चक्र मेरा पीछा कर रहे हैं मुझे खत्म कर डालेगा कहते मैं तुमको रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि एक में तो वैष्णव अपराध है वैष्णव अपराध इतने भयानक और वैष्णव अपराध इतने कठिन होते हैं कहते ये किसी को हमारे वृंदावन का सब कहते हैं सुलो पानी समझ की वैष्णव नींद तथा ना जाए पहले आश्रम सुलो पानी समझ शंकर जी के बराबर अगर कोई वैष्णव को निंदा करते हैं सुलो वृंदावन का सब कहते हैं उनको भी रक्षा नहीं है वो भी रक्षा उनके प्राप्त नहीं होता है इसलिए यहाँ पर उन्होंने वैष्णव चरण में अपराध किया और इनके पीछे कौन आ रहे हैं सुदर्शन चक्र भगवान का चक्र आ रहे हैं हम नहीं रक्षा कर सकते हैं अगर हम तुमको रक्षा करने के लिए जाऊंगा तो ये सुदर्शन चक्र हमारा ब्रह्मांड पद को नष्ट कर जाएगा, इसे तुम जल्दी भागो यहाँ से। इसका तात्पर्य क्या है, वैष्णव अपराध को कभी ध्यान नहीं देनी चाहिए। अगर हम ध्यान देंगे ना फिर हमारा पद से हमको चुप्त होना पड़ेगा, इसलिए वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक होता है। फिर वे शंकर जी के पास में गए, जब शंकर जी के पास में गए शंकर जी का हम भी नहीं रक्षा कर सकते, अगर हम रक्षा करने के लिए जाऊंगा फिर हमारा कैलाश भी ध्वंस हो जाएगा। इसलिए हम एक परामर्श दे सकता हूँ, कैसे बताइए, कैसे जिसका चक्र है आप उनके पास में जा सकते हो। इसलिए विष्णु का चक्र अगर आप उनके पास में जाओगे तभी आपको रक्षा हो सकता है। तो वहां से उन्होंने भागे, जब भक्के लिए गए, कैसे भाई ये जब वहां पर गए सब रमा वैकुंठ में गए, इसलिए जो रमा प्रिय वैकुंठ है, इसलिए जब वहां पर गए जब जाते ही वहां पर भगवान से चरण किए, जब बड़े प्रभु ने कहा क्या बात है, कहते हैं आज मुझे रक्षा कर, बोले क्या हो गया, कहते सुदर्शन चक्र मेरे पीछे हफ्ते लिए आ रहे हैं मुझे बात करने के लिए। अब हमारे भगवान कहते हैं देखो जो मैं तुमको जो दया करूंगा हृदय देकर मैं तुमको दया करूंगा, यदि हृदय मेरा बात नहीं साधवा मिल गया मुझे साधु नाम मिल गया तू हम मत अन्य ना जानती ना अहम से बना करती भक्त भक्त प्रबंधी माँ भक्त्या सतपति सतपति व्यथा, जैसे एक पति प्रथा नारी अपना सेवा कर द्वारा जैसे अपना पति को बसीभूत कर लेते हैं, पहले भक्त बन के सेवा को द्वारा भक्ति को द्वारा मुझे बसीभूत कर लिया है और साधव हृदय मुझम साधु मेरा हृदय स्वरूप है, अगर मैं साधु का हृदय स्वरूप है, इसलिए भक्त अपना हृदय में हुए अपना भक्ति को द्वारा भगवान का अपना हृदय में बांध लेते हैं। इसलिए मैं जो तुमको दया करूँगा हृदय दे करके, लेकिन मेरा हृदय भक्तों के पास में है, इसलिए मेरा हृदय यहाँ पर नहीं है। अब तुम अगर कभी कांटा अगर प्यार में घटता है तो कभी तीर से नहीं निकलता है, कांटा जिधर घटता है कांटा उधर ही निकलेगा। इसलिए तुमने जो अपराध किया है वो अपराध किया अंबर की तो चरण में और मेरे चरण में तुमने अपराध नहीं किया। दूसरा बात कहते देखो तुम उनको ऊपर में जो क्रोध किया क्यों किया, ये जो क्रोध किया ये तो बेकार क्रोध अपान का क्रोध है, वो जो व्रत कर रहा था वो एकादशी व्रत कर रहा था, उन्होंने केवल चरणा में कर लिया और वो भक्ति को रक्षा करने के लिए वो तो कोई अपराध तुम्हारा चरण में नहीं किया, तब उनको फिर कपालदशी में किया, इसलिए संपूर्ण दोष तुम्हारा है। इसलिए और भगवान ये भी शिक्षा देते हैं अगर कोई व्यक्ति वैष्णव के चरण में अपराध करेगा, अपराध करके विश्वनाथ ठाकुर माधुर के माधव बिंदी वहां पर वर्णना करते हैं, अगर कोई व्यक्ति वैष्णव के चरण में अपराध करके सोचेगा भाई हाँ भगवान के चरण में माफी मांगे, कभी नहीं होगा। अगर तुमने वैष्णव के चरण में अपराध किया तो वैष्णव के चरण में जाकर तुमको माफी मांगना पड़ेगा। और दूसरा बात कोई सोचेगा भाई वैष्णव तो अंतर्ज्ञानी होते हैं हम मन मन में माफी मांग लेंगे, कभी नहीं वो नहीं होगा। अगर जिस वैष्णव के चरण में हम अपराध किया है उसको चरण में जब जा करके हम नाक रगड़ाएंगे और वो वैष्णव जब सतमुच से हमारा हृदय में वो अपराध के लिए अनुताप करे, हम वो अपराध के लिए वास्तविक रूप में अनुताप करते हैं, ये जब हमारा आंखों के आंसू को देख करके ये देखेंगे नहीं ये जो मेरे चरण में अपराध किया है वो अपराध के लिए ये लाही इसके लिए पश्चाताप उसके हृदय में है, जब वे ये चीज को देख करके उनका हृदय द्रवित होगा तब ये वैष्णव अपराध से जिसको छुटकारा मिलता है उसको पहले छुटकारा नहीं मिलता है, नहीं तो भक्ति भक्ति हृदय से सब खत्म हो जाएगी। इसलिए भगवान यहाँ स्वयं अपराध से माफ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर भगवान वो अपराध के लिए नहीं, जब तक मेरे भक्तों के चरण में अगर कोई अपराध करेगा ये मेरे पास में आने पर भी वो अपराध से माफी उसको अपराध से उसको माफ नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे भक्तों के चरण में ही जाना पड़ेगा। इसलिए अंबर सिंह ये हमारे दुर्गा महाराज जी को फिर वहां से भागना पड़ा था अंबर सिंह महाराज के पास में, लेकिन अंबर सिंह महाराज वैष्णव है। लेकिन जब दुर्गा महाराज जी गए हमको एक साल हो गया वो घूम रहे हैं, लेकिन अंबर जी महाराज एक स्थान से ये खड़े हैं और अनुताप कर रहे हैं, देखो आज मेरे लिए आज हमारा घर में एक अतिथि आए वैष्णव आए, लेकिन मेरे लिए आज उनको कितना कष्ट उठाना पड़ रहे हैं, आज मेरे लिए कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, कितना दुख उठा रहे हैं, ये दुखी हो रहे हैं। अब जब हमारे दुर्गा कंठी गए, देखा एक साल से खड़े हैं, और जब अंबर दुर्गा उनको प्रणाम करने के लिए गए, उस समय अंबर जी महाराज दुर्गा जी को चरण में प्रणाम करने से, देखो मेरा आपके चरण अपराध हो गया, मेरे लिए आपको कितना कष्ट उठाना पड़ा, इसलिए आप मेरा अपराध माफ करो। लेकिन आज श्री दुर्गा की अंबर जी महाराज के भक्त का जीव चरित्र देखते हुए कहते हैं भक्त महिमा पक्ष अध्यय में आज मैंने आज मैंने अनंत दासों का जो महिमा है, आज मैंने दर्शन किया भगवान का जो भक्त होते हैं कितने उदार कितने महान, उनका हृदय कितना उन्नत होता है, अपराध तो किया मैंने, लेकिन आज उनका अंबर जी महाराज मेरे चरण में माफी मांग रहे हैं, मेरा अपराध आप माफ कर दो। इसलिए हमारे अंबर जी महाराज दुर्गा भरती को बड़ी सुंदर रूप में आपकी सत्कार करके उनको खिलाया, एक साल को बाद में फिर भी प्रसाद पाते तभी से हमारे दुर्गा भरती उनको दर्शन करके उनको जो हृदय परिवर्तन हो गया, उनका रंग में रंग करके हमें भी कृष्ण भक्त और मुझे कृष्ण भक्त उसमें परिवर्तन हो गए। इसलिए दुर्गाशाही तत्व तक दुर्गाशाही हुए साथी के रूप में कुछ एक करते हैं, लेकिन अंतर रूप में हुए विश्व ब्रह्मांड को भक्तों का और भगवान का महिमा को बढ़ाते हैं। तत्व तह हुए हृदय से क्यों वो शंकर जी का अंतर से आए, शंकर कौन है, वैष्णव नाम जैसा शंभू, इसलिए यदि उनका अंतर है ये वैष्णव होने का नाते हुए हर समय भक्तों का महिमा, अगर वे ये लीला नहीं करते तो अंबर जी महाराज का महिमा जगत में प्रकट नहीं होता, इसलिए वे तरह तरह का क्रिया करके वे तरह तरह का लीला करता, समय हुए साम्यवन में जो पहुंचे वहां पर भी उन्होंने द्रौपदी का महिमा वो भी बढ़ा है, उनको पता है पंची पांडव भगवान का बहुत बड़े भक्त है उनको पता है, लेकिन तब भी ये द्रौपदी और पंची पांडव का महिमा बनाने के लिए वो जाते हैं साम्य बन और अतिथि बन करके कहते मुझे मेरे को भूख लग रही है मुझे खिलाओ, लेकिन द्रौपदी उनको जो सूर्य प्रकट जो उनको थाली भी मिली हुई थी जब तक जितने आदमी आए वो सभी को खिलाएगी जब तक वो खुद खा नहीं लेती, इसलिए लेकिन आज द्रौपदी अपना बटल को धा करके उसको रख दिया, इतने में दुर्योधन के द्वारा प्रेरित होकर के ये हमारे दुर्गा परिचित साम्य बन में पंची पांडवों के पास उपस्थित होते हैं और सब राजा शिष्यों को लेकर के, इतने में हमारे युधिष्ठिर महाराज कहते आज कहाँ से आपद आ गया, ये तो दुर्गा परिचित आए हैं, ये तो महाक्रोधी है, आज इतने शिष्यों के साथ में आए, अगर इनको आतिथ्य सत्कार हम नहीं कर पाएंगे ये तो आज हमको अभिभूत कर डालेंगे, अभिशाप दे करके हमको खत्म कर डालेंगे, इतने में हमारे युधिष्ठिर महाराज कहते भी जल्दी से जाओ द्रौपदी को पूछो द्रौपदी क्या खा चुकी ना अभी खाई नहीं, जिसके नाम से पूछते द्रौपदी तुमने क्या खा चुकी बना में खाती करके बदल में जो झोल खा कर पल कर रख दिया तुमने सर्वनाश कर दिया, आज तो हमारे दुर्गा साल के 10,000 शिष्यों को लेकर यहाँ पर आए हैं, आज तो उन्हें हमको खत्म कर डालेंगे लेकिन हम क्या करेंगे, तब हमारे हमारे भीमसेन और युधिष्ठिर महाराज पंच पांडव कहते द्रौपदी तुमको तो कृष्ण बहुत प्यार करते हैं और तुमको शक्ति बोल करके संबोधन करते हैं, इसलिए कितने दिन पर तुम्हारा जब लाज जा रहा था उसी समय दुशासन जब तुम्हारा वस्त्र तुमको अपहरण कर रहा था उस समय कन्हैया भी तुमको रक्षा किए हैं, इसलिए हम लोग तो बड़े विपत्ति में पड़े हैं, इसलिए इसी विपत्ति में विपत्ति से तुम उद्धार कर सकते हो, इसलिए तुम तो भगवान कृष्ण तुमको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उनको एक बार तुम बुलाओ, इसलिए द्रौपदी बैठ गए जब वहाँ पर अपना हृदय जब कृष्ण को बुलाते हे कृष्ण चंद्र, हे कृष्ण कन्हैया, आप तो हमको हर विपत्ति से रक्षा दिए हो। जितने विपत्ति हमारा जीवन में आए, लेकिन हर विपत्तियों से तुम ही रक्षा दिए हो। इसलिए अभी तो तुम्हारे भक्तों को बड़े विपत्ति में पड़े हुए हैं, अगर आप नहीं रक्षा करोगे तब से हम लोग तो खत्म हो जाएंगे। आप दुर्गा माँ 10,000 शिष्यों को लेकर आए, इसलिए आप ही रक्षा कर सकते हो। द्रौपदी के नाम इतने में बैठ करके जब हृदय से अंतरात्मा से उनको पुकारते हैं, हे द्वारकानाथ, हे कृष्ण कन्या, आज रक्षा करो। अभी कृष्ण को हमने रुक्मिणी थाला में उनको परोस रही थी, कृष्ण भी खाने के लिए बैठे हैं। इतने में द्रौपदी की जो पुकार कृष्ण को कान में पहुंची, पहुंच गई। कृष्ण बोलते हैं द्वारक जल्दी आप तैयार करो। जब प्रभु प्रसाद पालो रुक्मिणी बोल रहे हैं, कहते नहीं, आज से आज अपना सखी को घर में जाकर भोजन करूंगा, आज वही भोजन करूंगा। इसलिए कृष्ण वहां पर छोड़ करके छठ पंचपांडवों के पास में पहुंच गए और द्रौपदी का आंख बंद करके कृष्ण ध्यान में डूबी हुई है। कृष्ण कन्या को पुकार रहे हैं, कृष्ण दरवाजा पर आगे।